सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश में जहाज निर्माण को नई दिशा और गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने देश के जहाज निर्माण क्षेत्र और मैरीटाइम इकोसिस्टम के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। इस पहल का क्या महत्व है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा, रोजगार के मौके कैसे बनेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, इन और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुबिमल भट्टाचार्य जी आज आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हैं। सुबिमल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्कार।
पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा पिछले महीने घोषित 69,725 करोड़ रुपए के सुधार पैकेज का क्या महत्व है?
देखिए, ये बहुत महत्व है और जिस समय में सरकार की तरफ से ये कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, क्योंकि अगर हम देखें कि हम इस वक्त ग्लोबल जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जहाज निर्माण की क्षेत्र है, उसमें हम सिर्फ 0.06% की काम करते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही कम है जिस मात्रा में हमारे खुद की ट्रेडिंग होती है। हमारी खुद की कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर की है, जिसमें 12 मेजर पोर्ट और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स जो है, जिसकी कंबाइंड क्षमता करीब 2,600 मिलियन टन की होते हैं एनुअल। अब ऐसा स्थिति में आप इतने ट्रेड के वॉल्यूम करते हैं और जिस तरीका से एक लार्ज स्केल सरकार की तरफ से एक आत्मनिर्भरता की जो पॉलिसी के रूप को बहुत और क्षेत्र में बड़ा सक्सेसफुली चलाया गया। इवन नेवल क्षेत्र में भी अगर देखें, नेवल शिपयार्ड की तरफ भी देखें तो करीब अब 60 नेवल जहाज इस वक्त बना रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखें किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता की एक पॉलिसी की सपोर्ट से दिए और ग्राउंड में भी काम शुरू करे, तो इसमें ये एक क्षेत्र था जो कहीं पीछे पड़ा था। इसलिए कैबिनेट की तरफ से ये जो मंजूरी आई है करीब 70,000 करोड़ रुपए की, ये बहुत महत्व रखता है। अगर आप देखें कि हमारे पास के चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये तीनों देश मिलके करीब आज जहाज निर्माण की 94% कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें चाइना खुद 50% के ऊपर रखते हैं। तो हमारी जब इतनी खुद की अपनी इतनी पोर्ट से और इतनी ट्रेड होते हैं और हमारे 95% की आज जो हमारे ट्रेड की वॉल्यूम जो होते हैं वो मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट से, तो इसीलिए इस वक्त ये चार पहलू जो सरकार ने रखी है, जिस तरीका से ये क्षेत्र को क्षमता दी जाती है और इसको एक टाइम बाउंड मैनर में लोगों के सामने और देश के सामने एक कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उसको हमें ध्यान से देखना है।
जी सुबिमल जी, सरकार के अनुसार ये जो सुधार पैकेज है, ये मैरिटाइम बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए इसके चार स्तंभ हैं। तो ये चार स्तंभ क्या हैं?
पहला स्तंभ है एनहेंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये कि इस क्षेत्र को, शिप बिल्डिंग को या जहाज निर्माण को फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, एक एग्जिस्टिंग शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को 2036 तक मंजूरी दी गई, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपया इस सपोर्ट ये भारतीय शिपयार्ड्स को दिया जाएगा, ताकि वो जो एक कॉस्ट डिसएडवांटेज होते हैं फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ, उसको वो ऑफसेट करे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये आपको एक वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरफ से आपको एक मौका देता है कि आप कैसे फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ पिकअप करें। दूसरी बात है, करीब 4,000 करोड़ रुपया अर्मा किया गया है कि शिप रिसाइक्लिंग थ्रू इनोवेटिव शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स की। तो ये होता है कि बहुत सारे शिप्स जो होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और जिसको स्क्रैप किया जाता है, तो उसमें 40% एक जहाज की स्क्रैप वैल्यू को क्रेडिट के रूप से वो जो बनाएंगे वेसल्स भारतीय जहाज यार्ड्स में, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट की स्कीम है, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एक मौका देगा और उत्साह देगा कि वो अभी ये भी इस क्षेत्र में आके सपोर्ट करें, क्योंकि क्रेडिट पहले की तरफ से अवेलेबल है।
जी
तीसरी जो पहलू है वो है किस तरीके से आप जो जहाज बनाने की जो कैपेसिटी इस वक्त, इसको एक्सपांड करें। तो इसमें शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम वो करीब 20,000 करोड़ को एक कमिटमेंट है, जिससे इस वक्त भारत की जो जहाज बनाने की क्षमता है उसको करंट लेवल जो है उसमें से 4.5 या 4.5 मिलियन क्रॉस टनेज एनुअली 2030 तक कैसे करें
जी।
तो मुझे लगता है ये बड़े कम समय में एक अच्छा एक टारगेट रखा गया। और इस जो इनिशिएटिव है इसमें नए जहाज बनाने के क्लस्टर्स भी बनाएंगे, जिसमें 1 से 1.2 मिलियन ग्रॉस टोनेज कैपेसिटी की जहाज बनाया जा सकता है
जी।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आते हैं, ये एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे क्या होता है कि आपकी जो मीडियम रेंज की जो शिपिंग कैपेसिटी है या शिप्स है वो करीब बढ़ जाते हैं, क्योंकि साथ साथ में 2015 के साल से जब से पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया, प्रोजेक्ट को ध्यान होगा कि
जी।
पोर्ट्स के ऊपर जो सागरमाला प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया और इस साल सागरमाला 2.0 फेस उसमें भी वो किया गया, जिसमें 339 प्रोजेक्ट्स को
जी
वो दिया गया। लेकिन जो आज प्रोजेक्ट सागरमाला का पिछले 10 साल में बहुत सारे पोर्ट्स हमारे डेवलप हुए, बहुत सारे ट्रैफिक भी चलने लगे, तो इसमें इस तरीका की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को और जिस टनेज की कैपेसिटी में लाया जाता है उससे नेशनल वाटरवेज जो हमारे है उसमें से बहुत सारे ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता है
जी।
और जिस तरीका से हमारे देश की इकोसिस्टम और ग्रोथ रहे हैं तो उससे हमारे, जिस तरीका से मैंने शुरुआत में बताया कि ज्यादातर हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आज भी मैरिटाइम सेक्टर से होते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो ये तीन पहलू है और एक चौथा और एक पहलू
जी
है।
मैं उसी चौथे पहलू पर आ रही थी सुबिमल जी, कि जो चौथा पहलू है, ये जो चार स्तंभ है इस पूरे रिफॉर्म पैकेज के, उस चौथा स्तंभ है वो है कानूनी नीति और प्रक्रिया सुधार, जिसके अंतर्गत सरकार ने भारत में बड़े जहाजों के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस भी दिया है। तो ये स्टेटस मिलने से इसके क्या फायदे हैं और इस सेक्टर का ग्लोबल कंपटीशन में मुकाबला करने में कैसे मदद मिलेगी?
सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जिस तरीके से शिपिंग एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक रूप धारण किए पूरे विश्व में, जिस तरीके से सैंक्शंस आते हैं, जिस तरीके से चाइना को लेके जो जियोपॉलिटिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो ऐसे स्थिति में मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 50% शिप बिल्डिंग दुनिया में आज के डेट में भी चाइना में बनती है
जी।
तो अगर चाइनीज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर किसी तरीके से पकड़ लीजिए कोई सैंक्शन आते हैं ना, तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज और जिस मात्रा में आज के डेट में वाणिज्य होते हैं तो वो सारे नए मार्केट ढूंढने में, तो अगर हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा के रखते हैं, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा के हम जहाज बनाने का निर्माण एक मिशन मोड की तरफ से करते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है। इसीलिए ये जो चौथा पहलू है जिसमें मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 में लाया गया था, कोस्टल शिपिंग बिल जिसको 2024 में लाया गया था, फिर इंडियन पोर्ट्स बिल 2024, ये तीनों लेजिस्लेशन जो बहुत पुराने हमारे जो कानूनी तैयार रहे इस देश में, इससे एग्जिस्टिंग कुछ रेगुलेटरी कुछ बॉटलनेक्स थे उसको अलाइन किया गया कि भारत की शिपिंग रेगुलेशंस भी एक ग्लोबल मैरिटाइम स्टैंडर्ड्स के साथ किया गया
जी।
जैसे कि मर्चेंट शिपिंग बिल वो वेसल ओनरशिप की एलिजिबिलिटी नॉन रेसिडेंट इंडियन को भी देते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी देते हैं और इंडिया रजिस्टर्ड बिजनेसेस इनको भी देते हैं। फिर अगर आप देखें तो कोस्टल शिप बिल्डिंग ये स्ट्रीमलाइन करते हैं ऑपरेशन, जैसे आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, कोस्टल रिवर इन वेसल्स, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट को कम करना, ये बहुत सारे चीज जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से रहते हैं, इस क्षेत्र में इस तरीके के सपोर्ट के रूप से दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कहा कि भारत विदेशी शिपिंग कंपनियों को उनकी सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए लीज के तौर पर सालाना $75 बिलियन यानी कि लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए देता है, जो कि भारत के रक्षा बजट के लगभग बराबर रकम है। तो इस आंकड़े को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो सुधार पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना सही है, और ऐसे समय में जब भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है तो ये पैकेज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
हमारी जो मैरिटाइम विजन 2047 जो है उसमें ये बड़ा स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हमारी ग्लोबल कार्गो शेयर ऑफ इंडिया फ्लैगशिप आज जो सिर्फ 2.6 है उससे 20% तक लिया जाना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो डिपेंडेंसी आज और आपने आंकड़ा दिया हुआ है, जो फॉरेन ओन्ड वेसल्स के ऊपर रहे उससे हम बिल्कुल दूर आते हैं। और सरकार की तरफ से जो ये एम्बिशियस टारगेट भी है लेकिन पॉसिबल भी है कि भारत को टॉप 5 ग्लोबल शिप बिल्डिंग नेशंस को 2037 तक फिट करे
जी।
तो ये जो मुझे लगता है ये जो पॉलिसी चेंजेस लाए, ये जो 3 लेजिस्लेशन लाए, ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे, ये जो एक स्टेबिलिटी और ईज ऑफ बिजनेस के मौका दे रहे, और जिस मात्रा में हमारी ट्रेडिंग खुद की होते हैं अब मैरिटाइम रूट से, इसमें हम अपने इंडिया फ्लैगशिप्स को डालेंगे और इससे हमारा सब तरफ से एक ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं और साथ साथ में हम हमारे बहुत सारे देश के मुनाफा भी बचाते हैं।
जी, तो हमारे जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है इसके पुनरुद्धार का बेशक बहुत बड़ा एक जो पहलू है वो है इसका आर्थिक जो असर है, लेकिन इससे भी अगर हम आगे बात करें तो इससे हमारी ऊर्जा और जो खाद्य सिक्योरिटी सुरक्षा है उसके लिए ये सेक्टर कितना जरूरी है, इसके साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस में ये इंडस्ट्री क्या निभाती है।
एक स्ट्रेटेजिक रूप में शिपिंग सेक्टर दुनिया के लिए इस वक्त उभर के आए हैं और इस स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में अगर हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को भी देखें, जैसे आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, हमारे खाद्य जो देश भर में हम लेके जाते हैं, आप पकड़ लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आज एक चिकन स्नैक की रूट से ट्रेन से या रोड से जाते हैं, लेकिन मैरिटाइम रूट से अगर हम लेके जाते तो बहुत बढ़िया होते हैं। वहां पे नेशनल वाटरवेज 1-2 जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में काम किया गया है, पोर्ट्स को इम्प्रूव किया गया है, तो ये जो हम अपने ऑप्टिमली अपने देश के सारे क्षेत्र में हम फूड ग्रेन्स पहुंचा सकते हैं, फूड मटेरियल्स पहुंचा सकते हैं इस मैरिटाइम क्षेत्र से, ये मुझे लगता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के रूप में भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है। दूसरी बात है कि हम अगर देखे तो हमारा जो डिपेंडेंस आज बाहर के जहाज के ऊपर है, आप पायरेसी छोड़ दीजिए, बट पायरेसी छोड़ के भी बहुत सारे कुछ है, मैंने थोड़ा पहले सैंक्शंस की बात बताया थी, अब मुझे लग रहा है सैंक्शंस बड़ा सामने, आज भी अगर आप देखें तो कई रशियंस के ऊपर जिस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ, और जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के अपने विवाद धीरे धीरे बढ़ता है जिसका ग्लोबल मैरिटाइम सिस्टम्स के ऊपर पड़ेगा, तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पॉइंट्स अगर आप फैक्टर करें तो हमें अपना शिप बिल्डिंग क्षेत्र को मजबूत करना है, हमारे खुद शिप्स भारत की फ्लैग इंडिया फ्लैग शिप और हमको देखने मिले, और हमारे जो अपने शिप से हम अपने फूड ग्रेन्स या और मटेरियल्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं देश भर में, या हमारे जो एक्सटर्नल नीड का भी वो रहता है, हम जब सपोर्ट भी करते हैं, अगर हम अपने शिप से अपने काम करते हैं और अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो नॉट ओनली एक इकोनॉमिक फायदा भी होता है, बट हम एक बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी के रूप से एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और बड़े जल्दी बना सकते हैं। 2047 में जब हम 31 भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में भी विकास बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम पोर्ट्स में 10 साल पहले ध्यान दिए, बहुत सारे पोर्ट्स अभी आए हैं और उससे अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किस मात्रा में बढ़े, मैंने थोड़ा पहले आंकड़ा रखा था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया कदम सरकार की तरफ से हुआ ये कैबिनेट डिसीजन के रूप से।
सुबिमल भट्टाचार्य जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे देश में जहाज निर्माण को नई दिशा और गति पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुबिमल भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में